ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परसों से लेकर ये शब्द तो पक्का हो गया होगा, फोन भी उठाएंगे तो शायद हेलो के बदले ओम शांति, हम लोग तो ओम शांति ही बोलते हैं। कल मॉर्निंग सेशन में आपने सोल रियलाइजेशन फर्स्ट चैप्टर ऑफ राजयोगा जरूर कंप्लीट किया होगा। कल सबने अटेंड किया, जरा मैं जानना चाहूंगी, कुछ कनेक्टेड होता है सेकंड लेसन। ओके, मूल रूप से आप जब माउंट आबू में आए हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर में आए हैं, तो आपका लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभवों का तो होगा ही। बाह्य जितनी भी अचीवमेंट्स है वो सब टेम्परेरी है, कुछ उम्र के साथ खत्म होती है, कुछ पोस्ट के रिटायर्ड होने पर समाप्त हो जाती है, कुछ चीजें इस शरीर के छोड़ने पर। लेकिन आत्मा जो इटर्नल ट्रुथ है, उसकी अपनी अचीवमेंट्स क्या है, जो हमारे पूर्वज हमें कहते आए, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। ये लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करती है हमेशा। तो वो अनुभूतियां, वो प्राप्तियां जो आत्मा के साथ जुड़ी रहती है, वो क्या है जो इस शरीर के छोड़ने के बाद भी नहीं छूटती, वो चीजें क्या है। अगर उस तरफ हमने ध्यान न दिया तो एक समय आएगा जब ये सोचना पड़ेगा, क्या खोया क्या पाया, बैलेंस में क्या ज्यादा होगा, पाया या खोया, हमारे पास क्या बचेगा। आज जो कुछ भी है जिसके आधार पे हम खुशी का अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं, मान प्राप्त करते हैं, रिगार्ड प्राप्त करते हैं, ये जो कुछ भी है, ये कितना समय मेरे साथ होगा, क्यों नहीं मौका मिला है तो कुछ अंदर की आत्मिक प्राप्तियों की ओर चलना है। कल आपने जाना कि आत्मा जो भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है, इंटरनल मैकेनिज्म है मन के द्वारा, वो संकल्पों का निर्माण करती है, बुद्धि विवेक हम सबको प्राप्त है, और उसके आधार पे जब हम कर्म करते हैं तो वो हमारे संस्कार बनते हैं, जो मेमोरी के रूप में आत्मा के स्टोरेज में चले जाते हैं, जो हमेशा रहते हैं। एक शरीर छोड़ दो, दूसरा शरीर छोड़ दो, बहुत लंबी यात्रा है आत्मा की, लेकिन जो आत्मा के स्टोरेज में चला गया वो साथ रहता है। तो मेरे स्टोरेज में क्या है, ये देखने का आपको यहां ज्ञान सरोवर में अवसर मिला है। कहते हैं मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। अगर पार होना है, पार होने का मतलब है एट द एंड ऑफ लाइफ मुझे ऐसा लगे कि मैंने सफलता जीवन की पाई, पार हो गए, तो पार होना है तो क्या करना होगा, भीतर जाना होगा। बाहरी चीजें बदलती रहती है, परंतु आंतरिक चीजों पर हमारा नियंत्रण है। तो जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण है हम उस सर्कल को बढ़ाने की कोशिश करें। बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। डीजल क्राइसिस कितने दिन चलेगा हमारा नियंत्रण नहीं है। जीएसटी बढ़ेगा या घटेगा हमारा नियंत्रण नहीं है। गर्मी ज्यादा होगी या कम, बारिश कितनी होगी, हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपनी माइंड की कंडीशनिंग कैसी रखूंगी, मैं अपने व्यवहार को कैसा रखूंगी, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगी, इट इज इन माई कंट्रोल ओनली। इसलिए आत्मा को सशक्त करें, आत्मा की शक्तियों को सशक्त करें। तो ये तो महसूस होता है कि आत्मा आज अपने मूल स्वरूप में नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप शांति है। कल आपने सुना होगा ना, शांति, इसलिए हम ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति का मीनिंग ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। केवल बोलना नहीं है, जितनी बार भी आप बोलेंगे इसको फील करना। क्या है, हम सारा दिन क्या बार बार रिपीट करते हैं, खुशी की बातें अपने तक रखते हैं। कोई ने किसी के साथ शेयर किया कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, यहां आपको नए फ्रेंड्स मिले होंगे, लेकिन क्या ये बात शेयर की आपने, नथिंग। लेकिन क्या शेयर करते हैं, गर्मी बहुत है हमारे यहां पे, बच्चे आजकल के मानते नहीं है, हमारे यहां ट्रैफिक की बड़ी प्रॉब्लम है, बॉस थोड़ा सा, कई बातें हैं। कौन सी ज्यादा शेयर करते हैं बार बार, जो परेशानी की बातें हैं। और जिन चीजों पर हमारा ध्यान अधिकतर रहता है वो चीजें घटती है या बढ़ती है। साइकोलॉजी कहती है जिन चीजों पर आप फोकस करते हैं वो चीजें जीवन में ग्रो करती है। तो हमें बार बार ये जो कहने की आदत है कि मैं इनसे परेशान हूं, मैं उनसे परेशान हूं, मैं तो अपने शरीर से भी परेशान हूं, कई कहते मैं तो अपने मन से भी परेशान हूं, पड़ोसी से भी परेशान हूं, बहुत सी चीजें, अगर ये बार बार इसी पर हमारा ध्यान जा रहा है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो चलिए हम अपने इटर्नल ट्रुथ और अपनी वास्तविकता पर ध्यान दें। वैसे भी कहते हैं रिलीजन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिनलिटी, अपनी वास्तविकता की ओर जो हमें मुड़ के ले जाएं वही है सच्चा धर्म। वरना रीति रिवाज तो बहुत है, रिचुअल्स बहुत फॉलो कर लिए, चार धाम कर लिए, न जाने कितना ही कुछ कर लिया, लेकिन क्या मैं अपनी वास्तविकता की ओर, जो मेरी मूल स्थिति थी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने हम सबको अपने ही जैसा बना के इस संसार में भेजा था, लेकिन आज हम कभी कभी किसी को ये कहते हैं इंसान तो बन, थोड़ी इंसानियत तो रखें कोई, कहां ईश्वर ने अपने जैसा बना के भेजा था, और आज इंसानी गुणों की भी कभी कभी कमी नजर आती है। तो चलिए हम अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने का अनुभव करें, और उसके लिए हमें कनेक्शन जोड़ना होगा। जैसे इसकी बैटरी बीच में डाउन हो सकती है, इसलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, पहले से ही बोर्ड अरेंज किया हुआ है और उसको कनेक्ट किया हुआ है ताकि बीच में कभी तकलीफ ना हो। हम इस संसार में आए, हमने कुछ ऐसा अरेंज करके रखा कि दुनिया में आएंगे, बहुत सारे जन्म लेंगे, बहुत सारे विचार करेंगे, बहुत सारे टेंशन आएंगे, बीच में मेरी भी बैटरी लो हो सकती है तो मैं कुछ व्यवस्था करूं। वो व्यवस्था है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की। संसार को सागर भी कहते हैं। हम सभी संसार में तैरने वाले या गोता लगाने वाले, गोताखोर, ऐसा विजुलाइज करें कि एक गोताखोर जब सागर में जाता है तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो वो जो ढूंढने गया है उसको ढूंढ ले, या अगर नहाने गया है तो उसका आनंद ले ले, लहरों में डाइविंग करने गया है उसका आनंद ले ले. लेकिन दूसरा ध्यान क्या रखना पड़ता है, जो समुद्र की गहराई में जाता है उसका एक कनेक्शन ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ होता है, उसे उसका भी ध्यान रखना होता है कि कहीं वो बंद ना हो जाए, डिसकनेक्ट ना हो जाए. तो हम भी संसार रूपी सागर में गोते लगा रहे थे, लेकिन हमने एक गलती कर दी कि संसार में जो करना है वो तो करते रहे, उसका तो ध्यान था कि युवा हो गए अब शादी कर लेनी चाहिए, इतना टाइम हो गया अब बच्चे चाहिए, इतना समय हो गया बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, इतना टाइम हो गया मकान बन जाना चाहिए, ये हो गया अब तो प्रमोशन होना चाहिए, ये हो गया अभी समाज में सोसाइटी में कुछ बन जाना चाहिए. यहां जो करना है वो तो हमने पूरा ध्यान दिया, लेकिन हमारा कनेक्शन ठीक रहा है वो ना होने से हम धीरे धीरे महसूस करते हैं कि जीवन में कमजोरी जो प्रकट होती है बीमारियों के रूप में, गुस्से के रूप में, तनाव के रूप में और फ्रस्ट्रेशन के रूप में, और भी अनेक चीजें वाणी में भी आ जाती है. ये सिम्टम हमें आज सबके अंदर दिखाई देते हैं, अपने आप को देख लीजिए. तो चलिए अभी परमात्म शक्ति से जुड़ना, जहां से आत्मा को प्राप्ति हो. लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उस ईश्वर को जहां मुझे कनेक्ट होना है उस पॉइंट को ढूंढना है. आज मनुष्य उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, किसी को बोलो भगवान का नाम लो, कौन से वाले भगवान का नाम लो. अच्छा सोमवार है तो चलिए शिव जी का नाम ले लेता हूं, मंगलवार है तो हनुमान जी का ले लेता हूं, गणपति जी का बुधवार को ले लेता हूं, गुरुवार को साईं बाबा चला जाता हूं, शुक्रवार को कुछ और. हम कंफ्यूज्ड है, तो आज हमें उस इटर्नल ट्रुथ की ओर चलना है. ये परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार पे आपको बता रहे हैं, आपको मैच करना है कि आप जो अब तक करते आए उससे आप कहां बेहतरी कर सकते हैं. चेंज कुछ नहीं करना है, कुछ बेटरमेंट लाना है, कुछ और गहराई में जाना है. तो अनेक देवताओं को हम मानते आए हैं, ये सभी ईश्वर के रूप है ऐसा मानते हुए, लेकिन देवता जिनका भाव है सतत देने का, गुणों से भरपूर है और वो दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कहा गया है कि वो विष्णु के अवतार के रूप में संसार में जन्म लेकर अपने समय पर अपने दिव्य कर्तव्य करते हैं. लेकिन क्या ये परमात्मा है पहले सोचिएगा, क्योंकि एक शब्द ये भी कहते हैं देवों के देव, शब्द सुना है ना, देवों के देव कौन, तो जरूर इनसे भी कोई सुपीरियर है जरूर, है ना, तो गॉड किसको कहेंगे. कुछ लोग फिर अपने अपने धर्म संस्थापक जिन्होंने भी अलग अलग धर्मों की स्थापना की, जैसे हजरत मोहम्मद साहेब जिस उसमें आए, उनका आदि इब्राहिम इस्लाम के संस्थापक, जिन्होंने पहला शब्द जब उनको साक्षात्कार हुआ तो पता है कौन सा बोला था, इब्राहिम जी के द्वारा उद्घोषित होने वाला इस्लाम का फर्स्ट वर्ड, देही में शिवा, फर्स्ट पेज ऑफ कुरान, देही में शिवा. कहीं ना कहीं प्राप्ति हुई तो उस ज्योति से हुई थी. महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के आज बहुत अनुयायी है, महात्मा बुद्ध जीवन भर एक बात कहते रहे, चित्र की पूजा मत करिए, चरित्र की पूजा कीजिए. लेकिन ये भी करुण वास्तविकता है कि संसार की जो सबसे बड़ी मूर्ति थी ना, आज नहीं है, वो किसकी थी? फाहियान में, अफगानिस्तान में जब दंगे हुए, उस मूर्ति को तोड़ा गया, वो संसार की द बिगेस्ट स्टैच्यू ऑफ वर्ल्ड, वो महात्मा बुद्ध का बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो ये कहा कि व्यक्ति महान नहीं है, व्यक्तित्व महान है। गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर माना कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सर्व गुणों का जो स्रोत है वो ईश्वर है। लेकिन पीछे जो फॉलो होती गई चीजें, उसमें क्या हो गया? ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपकी भी मूर्ति बना देते हैं और आपकी भी वही विधि विधान से पूजा हो रही है, हमने फॉलो नहीं किया। महावीर स्वामी जिनके द्वारा जो नमस्कार मंत्र दिया गया, वैसे तो जैन संप्रदाय में हम जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी आए, जिन्होंने बहुत सारा साहित्य और संघ की स्थापना करके जैन धर्म को व्यवस्थित किया। नमस्कार मंत्र या जिसको नवकार मंत्र कहते हैं, जिसमें सर्व सिद्ध और योगियों को नमस्कार किया जाता है, उसका पहला लाइन है ओम नमो अरिहंताणम। और अरिहंत नाम की कोई मूर्ति नहीं है। सेकंड आता है ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ये अलग है, पीछे के पंच परमेष्टी का नमस्कार। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है वो है ओम नमो अरिहंताणम। अरिहंत मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है, शत्रुओं का उपस्थिति ही नहीं है। जो संसार में आता है, कर्म जन्म इस चक्र में आता है, उनके कोई ना कोई मित्र और शत्रु अवश्य बनते हैं। अरिहंत उनका नाम है जो जन्म और मृत्यु से परे है, ईश्वर उनको कहा गया है। ईसा मसीह, विश्व में बहुत बड़ा ईसाई समुदाय है, जो उनकी क्रॉस पर जो स्टैच्यू है उसको ये अक्सर सामने ध्यान में रखते हैं। हम देखते हैं चर्च के अंदर जब प्रेयर होती है तो कैंडल की जो ज्योत है उस पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। तो ईसा ने स्वयं को कभी भी नहीं कहा कि आई एम गॉड, उन्होंने एक ही बात कही, आई एम द सन ऑफ गॉड, द मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं आया हूं उसका मैसेज लेकर, मैं भगवान हूं कभी भी नहीं कहा। तो उनका मैसेज, तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला? गॉड के लिए ईसा ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। और इसीलिए ध्यान प्रेयर की जाती है तो किसके ऊपर ध्यान फोकस करते? ज्योत के ऊपर। जैसे कि हम सनातन धर्म में दीपक की लौ, अपना चेतन रूप परमात्मा का अनुभव करने के लिए दीपक जरूर जगाते हैं। हर वो चीज के लिए पहले हम ज्योत जरूर जगाते हैं ना, चाहे यज्ञ हो, रोज की दीवा आरती हो, सब में सेम चीज है ज्योत। ये परमात्मा का स्वरूप बताया गुरु नानक देव। वैसे तो सिखों में गुरु परंपरा रही है, उनमें जो गुरु में 10वें गुरु हुए गुरु नानक देव, उन्होंने भी जो ईश्वर के बारे में कहा वो क्या? अजोनी अकर्ता कर्ता पुरुष। ये जो महिमा है अजोनी, जो योनि में, ये इस संसार के किसी स्त्री या पुरुष देह में नहीं आते हैं, इसलिए जब वो अभिवादन करते हैं तो क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। अकाल जिनको काल नहीं खा सकता, काल समय से परे, जन्म मृत्यु से परे, उन्हें कहा है सत्य, सत्य ईश्वर अविनाशी शक्ति। तो कहीं ना कहीं हमें उस ओर ही इंगित किया गया है कि वो एक है और निराकार है। तो ये धर्म संस्थापक जो थे वो ईश्वर नहीं थे, वो उन्होंने ईश्वर का मार्ग बताया। परंतु आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर लोग इनकी ही पूजा सिर्फ कर लेते हैं कई बार, है ना। अब जैसे आप माउंट आबू में आए हैं, आपको किसी देवी जी के मंदिर में जाना है, आप हमसे बात करते हैं कि बहन जी आप तो यहाँ रहते हैं, आप फलाने मंदिर को हमें जाना है, कैसे जाएं? तो मैं आपको मार्ग बताती हूँ कि इधर से जाएंगे, एक पहाड़ी आएगी, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वो छोटा सा मंदिर है, थोड़ा नीचे उतरेंगे, फिर वहां जाएंगे। आपको लगता है कि मेरे से इतना कुछ तो होने वाला नहीं है, तो आप कहेंगे बहन जी हम आपके चरणों में प्रणाम कर देते हैं और आप जब कभी वहां जाएं चल जाएगा। कुछ वैसे ही हमने किया, जो अल्टीमेट गोल मिला, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिला, हम वहां तक नहीं पहुंचे। हमने कहीं ना कहीं जिन्होंने मार्ग दर्शाया उन्हीं को ही। इसीलिए आज तक मानवता इतने धर्म, इतने रिचुअल्स, इतना कुछ होने के बावजूद भी अपलिफ्ट हो रही है, अपलिफ्ट नहीं हो रहे हैं, यानी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो हमें सोचना होगा। इसी तरह से कुछ और महात्माएं भी आए, जैसे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सन्यास आश्रम, सन्यास मार्ग प्रारंभ किया। उन्होंने महसूस किया कि परमात्मा को पाने के लिए जो मन को एकाग्र करना है, तो मनोविकार वासनाएं ये मन को आकर्षित कर लेती है, इसलिए हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हमें ऐसा मार्ग ढूंढना है कि संसार से विरक्त हो जाएं और सन्यास ले लें। और आज भी वो सन्यास परंपरा में भारत में करोड़ों साधु है, बहुत अच्छा त्याग तपस्वी मई जीवन उनका है, परंतु वे स्वयं भी क्या थे, महात्मा थे। उन्होंने भी ये तो नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, उनकी एक परंपरा, उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया, नारायण संप्रदाय है। तो उसमें भी जिन्हें नीलवर्णी कहा गया, स्वामी नारायण के रूप में जिनका गायन है, उन्होंने कई सालों तक हिमालय में तपस्या की, ठंड में एक पांव पे खड़े रहकर। तो उन्होंने बहुत शक्तियां, सिद्धियां जरूर हासिल की, लेकिन वो स्वयं क्या थे, तपस्वी थे। लेकिन बाद में हमने क्या कह दिया, उन्हीं को ही हम पूजने लगे। सेंट जेवियर्स और इस तरह के कई संतों का भी क्रिश्चियन में हम जानते हैं कि जिनके नाम से आज हम बहुत से उनके चर्चे होते हैं, उन्होंने कोई चमत्कार किया, उन्होंने कुछ किसी को ठीक किया। बिल्कुल, जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपकी वाणी में, आपके शरीर में, आपकी दृष्टि में इतनी शक्तियां आती है कि आप किसी को देखेंगे उनको भी सुकून मिलेगा। आप मेडिटेशन करेंगे डेली, आपने किसी के ऊपर हाथ रख के कहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप भी ये काम करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। सिद्धियां मिलती है, लेकिन केवल सिद्धियां होने से मैं ईश्वर नहीं हो जाती हूं, सिद्धिदाता अलग होता है। जैसे आप राजस्थान में अजमेर जाएंगे तो ख्वाजा दरगाह है, जहां पे बहुत से लोग जाते हैं कि हमारी तो बस यही आस्था है, क्योंकि यहाँ हमारे कार्य हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, हम जो सोचते हैं वो काम हो जाता है, तो कुछ लोग वहां जुड़े रहते हैं। तो किसी स्थान पर भी जब बहुत सारे लोगों की आस्था होती है तो उस स्थान की भी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से साईं बाबा के नाम से भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं कि जो उनके द्वारा भी चमत्कार होता है करके, और उनको मानते हैं। बुरा कुछ भी नहीं है, मैं आपको अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही हूं। हम इनमें से किसी को भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो आपने सुना है वो गलत है, वो बिल्कुल उन्होंने किया है और वो संप्रदाय में आज भी लोग करेंगे, लेकिन हमें उससे आगे, उसके और भीतर, उससे और हायर कॉन्शियस की तरफ चलना चाहिए, जो अभी तक हम शायद नहीं चले हैं। कुछ लोग फिर कहते हैं कि नेचर, जिसका एक स्वभाव ही है कि सब देती है, प्रकृति हमें देती है ना, कहते हैं ना, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदी न पिए कभी अपना जल, तो ये सब देने वाले हैं, तो ये भी ईश्वर है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते कि सूर्य ही सारे संसार की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य न हो तो शायद जीवन ही न हो, इसलिए सूर्य को ही पूजा करते। हमारे यहाँ छठ पूजा आदि भी होती है, आपको पता होगा, खास करके यूपी बिहार में, और बहुत ही श्रद्धा के साथ, और समझते हैं कि ये हमने भगवान को याद कर लिया। नहीं, हमें इन तत्वों की जरूर महिमा होनी चाहिए, उनका थैंक्स भी करना चाहिए, उनका संरक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि जब से संसार में प्रकृति के अंदर प्रदूषण हुआ है या इको सिस्टम में जब इम्बैलेंस हुआ है, तब से बहुत ज्यादा दिक्कतें जीवन जीने की हो रही है। इसलिए इनके बड़े एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन क्या ये ईश्वर है? एक तत्व है। नदियां है, अग्नि है, सबकी अलग अलग तरह से हम पूजा करते आए। जैसे पारसी संप्रदाय है, उसमें अग्नि की ही पूजा की जाती है, मंदिर के अंदर भी टेम्पल ऑफ फायर होता है, सिर्फ अग्नि होती है। नदियों को भी हम, और ये बहुत करुण वास्तविकता, आप ये माने कि जिन देशों में नदियों को देवी नहीं माना जाता, पूजा नहीं जाता है, वहां की नदियां ज्यादा साफ है, और जिन देश में नदियों को माता कहा जाता है, लेकिन वहां नदियों की स्थिति हमने क्या बना रखी है, सारा कल कारखानों का, घर का कचरा भी बह रहा है, तो हम ये कैसी पूजा कर रहे हैं? पूजा का मीनिंग यही था कि इन सारे तत्वों का महत्व बताया जाए। हमारे पुरातन ऋषियों ने देखा कि मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि वो केवल खुद का ही भला सोचेगा, उसके लिए वो दूसरों का अकल्याण भी कर देगा। इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें हमारे कल्चर में डाली कि भाई वृक्ष को धागा बांधो, नीम को नारायण मानो, माताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए भी वो व्रत करती है तो नीम की सुरक्षा करती है, इस बहाने तो नीम बचेंगे, इस बहाने तो नदियों की सफाई होगी, इस तरह ही लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए कहा गया। परंतु हम केवल इनको पूज लेंगे तो ईश्वर की अनुभूति नहीं हो पाएगी। अनेक प्राणियों के रूप में भी, जैसे हम गोवर्धन पूजा करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, तो हम उसमें गाय की पूजा, किसी और को भी अच्छा, परंतु इन सब से प्रकृति का बैलेंस बनाने का एक प्रयास था। ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रकृति को पूजने से नहीं हो जाएगी, तो फिर ईश्वर कौन है? शास्त्रों की अनेक मत है, शास्त्रों में एक सगुण पूजा, एक निर्गुण पूजा, इस तरह से दो पंथ है। एक तो होता है जिन्होंने जन्म लिया, कर्तव्य किए, उनके कर्तव्यों की गाथाएं गाना, जैसे रामायण, भागवत, महाभारत, इस तरह से उसमें हम अनेक प्रकार की, जिन्होंने अवतार लिया और उस अवतारी जीवन में जो भी उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए, जिसको लीला कहते हैं, या उनका हम गायन करते हैं, शास्त्र पढ़ते, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि श्री राम कैसे थे, हमें कैसा बनना चाहिए। पर आज हम देख रहे हैं श्री राम कथा बहुत प्यार से, भाव से हम सुनते हैं। जब अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हुए, तो उस दिन इंटरनेट पर बाहर थी, हम सब अपने अपने घरों में भी आंखों से सजल हो गए थे कि हमारे प्रभु विराजमान हो गए। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास भी खुशी खुशी स्वीकार किया। आज कितने युवा बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा के लिए कुछ करते हैं? तब फिर प्रश्न फिर वही आता है कि हम जिन्हें पूज रहे हैं उनके चरित्र को पूज रहे हैं, केवल केवल चित्र को, उनकी गाथाएं गा रहे हैं, लेकिन हम स्वयं क्या कर रहे हैं? जिस देश में ये कहा जाता हो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उस देश में ओल्ड एज होम क्यों खुल रहे हैं? क्यों घर में बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही है? कहां है श्री राम के आदर्श? तो बहुत सी चीजें हैं। कुछ लोग फिर कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। ये भी इसलिए कहा गया कि हमारे मनीषियों ने सोचा कि ये सबका ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए उन्होंने कहा सब में ईश्वर है, ताकि मनुष्य सबका संरक्षण करेगा, क्योंकि सबसे पावरफुल तो इंसान है। उसका फर्ज है कि वो बाकी जितने भी सृष्टि के प्राणी मात्र है उनको, उनका ध्यान रख के जिए, जियो और जीने दो। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय पहले तो हमने इतनी विभत्स चीजें देखी है कि मनुष्य प्राणी और पशुओं को तो मार के खा रहा है, लेकिन क्या देखा हमने, कुछ ऐसे भी सुसमृद्ध समाज के लोग जो अपने आप को इतना पावरफुल और इतना ज्यादा एडवांस समझने लग रहे हैं कि उन्होंने मासूम बच्चों का भी भक्षण किया है। और हो सकता है वो आज तक कितने लोग कर रहे होंगे, वी डोंट नो। कहां पहुंची है मानवता कि स्वयं को जिंदा रखने के लिए, स्वयं को जवान बनाए रखने के लिए वो संसार के कमजोर मासूम बच्चे बच्चियों तक का भी खून भी पी रहे हैं। इसलिए ये नियम, इसलिए ये सोच हमारी संस्कृति ने हमें दी थी कि परमात्मा सब में है। जैसे आप ईश्वर को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपकी श्रद्धा से हाथ जुड़ जाता है, मस्तक झुक जाता है, संसार के सभी प्राणियों को, मनुष्य मात्र को देखते हुए भी वैसी ही श्रद्धा का भाव रखिए। रामायण में भी यही कहा, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अंतिम बात है, जब तक ये नहीं समझा तो रामायण क्या पढ़ी हमने। मुझे लगना चाहिए कि जो श्रद्धा मेरी परमात्मा में है वही मेरी सबके प्रति हो जाए, तभी जीवन सार्थक होगा। तो सर्वव्यापी इसलिए कहा, बाकी तो आज जन जन के मानस में जो विकृतियां हम देख रहे हैं, बाल अपचारी लोग हैं, हर 6 सेकंड में भारत में एक रेप हो रहा है। जब तक ये लेक्चर पूरा होगा ना, भारत की 30-35 से भी ज्यादा बहन बेटियां या बच्चों पर अत्याचार हो चुका होगा, और हम सब देख रहे हैं, सब कुछ कर कुछ नहीं रहे। क्या हाल है ये, कहां है ईश्वर? ईश्वर अगर सब में व्याप्त होता तो ईश्वर कोई जड़ पदार्थ तो नहीं है कि घर में पड़ा है, कहीं कोने में पड़ा है। जहां अग्नि होगी वहां गर्मी तो होगी, जहां जल होगा वहां शीतलता तो होगी, तो जहां ईश्वर होगा वहां दिव्यता होगी, वहां श्रेष्ठता होगी। वहां दुराचारी कैसे हो सकता है कोई, वहां कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? परंतु ये केवल श्रद्धा है, ये केवल एक संसार को बचाने के लिए एक अच्छा चिंतन दिया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा कि सबके अंदर ईश्वर को देखिए। प्रैक्टिकल में हम देख नहीं पा रहे हैं। कौन से व्यापारी को अपने ग्राहक में भगवान दिखता है? कौन सी सास को अपनी बहू में भगवान दिखता है? प्रैक्टिकल में तो नहीं देख रहे हैं, खाली कह रहे हैं जिधर देखू जित देखू तू ही तू। बोलने में अच्छा लग रहा है, कर नहीं रहे वैसा कुछ, करे तो बहुत कल्याण हो जाए। इसलिए ये भी सही नहीं है। कुछ लोग मृत आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को भी पूजते हैं कि उनमें बड़ी ताकत होती है, उनको वश कर लिया जाए, उनसे कुछ ख्वाहिशें रखी जाए और वो भी पूरी करेंगे और वो भी शायद बहुत शक्ति देंगे, इसलिए पूजते हैं। हो सकता है कुछ आत्माएं अधूरे कार्य छोड़कर जब चली जाती है संसार से तो वे दूसरे जन्म, दूसरा शरीर नहीं ले पाती है, और ऐसी आत्माएं जब बिना शरीर के घूमती है तो वे अपना कोशिश करती है पिछला जो अधूरा कार्य है वो किसी और में प्रवेश कर या किसी के द्वारा पूरा करे। इसी तरह कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है तो कुछ बुरी आत्माएं भी होती है, ये पॉसिबल है। इसमें हम अभी नहीं जाएंगे, ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन केवल ऐसे किसी सिद्धि को प्राप्त करके हम ईश्वर की तरफ नहीं जा पाएंगे। फिर कुछ लोग कहते सबको छोड़ो, अच्छे काम करो, वर्क इज वर्शिप। अच्छा सोच है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए भी आपको प्रेरणा भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। और जब कभी आप अच्छे कर्म करोगे ना, बहुत बार करोगे, लेकिन आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा, तब फिर आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? छोड़ो, क्यों करना, बहुत कर लिया, किसी ने तो कदर नहीं की, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तब फिर शक्ति की जरूरत पड़ेगी कि आप पुनः कैसे शक्तिशाली रहो, कैसे शांत रहो, कैसे मन को शुद्ध रखो। इसलिए कर्म तो अवश्य करना है। हम जो राजयोग की बात करते हैं, राजयोग भी कर्मयोग है। जैसे विवेकानंद जी ने भी कर्मयोग की बात कही थी, संसार से विरक्त होके बैठकर योग करना नहीं है। आप यहां जितने भी लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो खाना परोस रहा है, चाहे कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट में है, परंतु वो सभी योगी है। उन्होंने भी अपना अपना कर्म बहुत बखूबी करना चालू रखा है। कर्म तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, पर ईश्वर जो है उस परम सत्ता को साथ रखना है। अब ईश्वर को पहचानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कुछ अंध व्यक्ति एक बार एक बड़े से हाथी के पास पहुंचे और उन्होंने ये जानना चाहा कि ये क्या है और कैसा है, हमारे सामने क्या है। तो ये उदाहरण आपने कई बार सुना ही होगा। तो सबने स्पर्श करके देखने का, क्योंकि आंखों से वो नहीं थे देखने वाले, तो जिसने किसी ने भी उनकी सूंड पे हाथ रखा तो क्या कहा, हाथी सांप की तरह है। किसी ने कान तक पहुंच के बोला, हाथी सूप जैसा है। किसी ने कहा कि दीवार जैसा है, क्योंकि उसका हाथ पीठ पर दूर दूर तक कहीं कुछ और नहीं लग रहा था, उसको पीठ ही दिखाई दे रही थी। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो कहा हाथी रस्से जैसा है। तो किसी ने उसके पैरों को स्पर्श किया तो उसने कहा कि हाथी खंभे जैसा है। अब हम बताएं इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, आप बताएंगे? सभी सही है और सभी गलत भी है। कारण क्या है? किसी ने भी पूरे हाथी को नहीं देखा है। ऐसे ही संसार में अनेक मठ पंथ संप्रदाय है, सभी सही है, क्योंकि उन्होंने जितना अनुभव किया, जितनी प्रैक्टिस की, जितनी प्राप्ति की, उस अनुसार उन्होंने एक वे बनाया। दे आर नॉट रॉन्ग, हम किसी को भी रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि वो दिव्य चक्षु प्राप्त कीजिए जिससे आप परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को देख पाए, अनुभव कर पाए और आत्मसात कर पाए, उसकी अभी कमी है। इसलिए आज जितने भी मठपंथ या आप भी जिन मान्यताओं के आधार पर चले हैं वो भी ठीक है, परंतु आज एक और कदम आगे बढ़ाना है, बस यही हमारा प्रयास है। कौन हो सकता है परमात्मा? आपके पास आके कोई भी ये कह दे कि मैं डॉक्टर हूं तो ऐसे तो आप नहीं मानेंगे ना। जरूर आप कहेंगे, अच्छा कौन से डॉक्टर हैं आप, क्या करते हैं, कौन सा इलाज करते हैं, कितने समय की आपकी प्रैक्टिस है, अब तक आपने क्या क्या किया है, जानना चाहेंगे ना। ठीक वैसे ही परमात्मा किसे कहना चाहिए? आजकल तो कई लोग ऐसे कहते हैं, मैं ही भगवान हूं, ऐसे भी कहने वाले बहुत सारे हैं दुनिया में, और लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। फिर चाहे जो भी प्राप्ति होती होगी, वी डोंट नो, परंतु उनके पीछे भी लोग चल पड़ते हैं कि हाँ भाई हम आपको भगवान मानेंगे। लेकिन ये बात तो नहीं है ना। तो पहली चीज, परमात्मा किसे कहना चाहिए? जो सर्वज्ञ हो, क्योंकि उसके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसका ज्ञान उसको ना हो, सब कुछ जो जानता है। कहते हैं ना, भगवान दिल की धड़कन को भी सुनता है तो मेरे कई जन्मों को भी जानता है। जैसे गीता में भी ईश्वर का महावाक्य है कि मैं तुम और ये सभी पहले भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, और हे अर्जुन आगे भी कई बार मिलेंगे, लेकिन तू भूल जाएगा क्योंकि तू जन्म मरण में आ जाएगा, मुझे वो सब याद रहता है, मैं तुझे आज याद पुनः दिला रहा हूं। तो परमात्मा वो होता है जो युग बीत जाए, कई जन्म कई कल्पों के चक्र पूरे हो जाए, लेकिन उनका ज्ञान नहीं मिटता। हमारा ज्ञान एक जन्म पूरा होकर दूसरे जन्म में जाएंगे तो यहां का कुछ भी याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद आता है तो बचपन में भुला दिया जाता है, गड़बड़ हो जाएगी, दो जन्म की मेमोरी इकट्ठी हो जाएगी। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। दूसरा सर्वशक्तिमान, जिसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, वो ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर भी हो और कुछ करने के लिए उन्हें भी कहीं और जाना पड़े, किसी और से लेना पड़े शक्ति, मांगना पड़े, वो ईश्वर नहीं। जो सर्वोच्च हो, जिनसे और ऊपर कोई नहीं, सर्वोच्च सत्ता को ईश्वर कहेंगे। इसलिए हर धर्म ने एक बात कॉमन कही है, क्या? गॉड इज वन, है ना। सर्वोच्च शिखर पे हमेशा कितने लोग होते हैं? एक। प्रेसिडेंट एक देश में कितने होते हैं? सिंगल होता है ना। तो जो टॉप का पद होता है ना, वो हमेशा एक होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि देर आर सो मेनी गॉड्स, गॉड इज वन। तो वन माना जो सर्वोच्च है वही हो सकता है। सर्वोपरि, हम कहते भी है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा, है ना। सर्वोपरि हमेशा याद भी करते हैं तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। कोई कुछ करता है तो कहता ऊपर वाला देख रहा है, भाई थोड़ा तो ध्यान रख। हम सबका ध्यान कहां जाता है? कोई नहीं कहता अंदर वाला जाने, ऊपर वाला। सर्वोपरि है क्योंकि ऊंचे से ऊंचा उनका धाम है। यहां हम बैठे हैं, साकार मनुष्य लोक है, इसके ऊपर देव सूक्ष्म सृष्टि है, और सबसे ऊपर तीन लोकों में जो है, कल आपको बताया ही गया होगा, आत्मा और परमात्मा का जो मूल निवास है वो सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, शांति धाम या परम धाम है। सर्व धर्मों में जिसकी मान्यता हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। परमात्मा वो हो जिसे सर्व धर्म स्वीकार करे। आप कहेंगे ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। सर्व धर्मों में जो कॉमन चीजें हैं उस पर हमने बहुत स्टडी किया है। परमात्मा ने वो कॉमन ट्रुथ हमारे सामने रखा है, और इसलिए मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि परमात्मा के द्वारा रचित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व के सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए। विदेश में भी हमारे 142 कंट्रीज में सेंटर है, जहां पर इस्लाम से जुड़े हुए लोग, बौद्धिस्ट लोग, क्रिश्चियन लोग, जुडाइज्म से जुड़े हुए लोग, अन्य भी अनेक संप्रदाय के लोग जुड़े हुए हैं, और उन्होंने उस सत्य को पहचाना है। क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं निराकार ज्योति स्वरूप का वर्णन अवश्य है। चाहे किसी को भी पूज रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी इशारा किया गया है कि ईश्वर किसी मूरत का नाम नहीं, एक ज्योत रूप है, और यही परमात्मा का परिचय, परमात्मा का शिव ज्योति का रूप, ये कॉमन है सभी धर्मों में। आपको आगे भी बताएंगे, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार ज्योति। निराकार से मतलब ये नहीं है कि उनका कोई आकार ही नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जिसका अस्तित्व हो लेकिन आकार ना हो। अस्तित्व है तो आकार भी है, परंतु बहुत ही सूक्ष्म, जिनको इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं सबको आत्मा रूप में देख रही हूं, लेकिन अगर कोई का शरीर छूटता है, मृत्यु होती है, तो हम कहते भी है कि अब तो आत्मा गई, लेकिन तब भी उस जाने वाली चीज को क्या हम देख पाते? देख पाते? कदाचित नहीं। कई बार वैज्ञानिकों ने कोशिश किया कि उसको एक में हवा चुस्त डब्बे में बंद किया जाए और देखते हैं, तब भी क्या हुआ? कहीं ना कहीं स्क्रैच हुआ और वो आत्मा निकल गई, परंतु दिखाई माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दी गई, क्योंकि वो इन आंखों से स्थूल चीजों से बनी हुई चीज नहीं है और देख भी नहीं सकते। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं, न शस्त्र काट सकता, न हवा उसे सुखा सकती, न अग्नि जिसे जला सकती, वो है आत्मा। ऐसे ही परमात्मा भी पांच तत्वों से न बना है, न पांच तत्वों की आंखों से, चर्म चक्षुओं से जिसे देख सकते हैं। तीन मुख्य वर्णन कर सकते परमात्मा के स्वरूप का, एक तो वो निराकार है, निराला आकार है, दूसरा वो ज्योतिर्मय बिंदु है, द पॉइंट ऑफ लाइट, और तीसरा वो अविनाशी है, न उसे बनाया गया न उसे खत्म किया जा सकता है, वो है ही है। इसलिए उनका एक नाम है सदा शिव, सुना होगा आपने, सदा शिव, सदा है। शिव शब्द भी, शिव के साथ शंभु भी बोलते हैं, है ना, शंभु भी शिव के लिए बोलते हैं, वो अपभ्रंश हुआ शब्द है, मूल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट होते हैं उसे शंभु कहते हैं। उनको किसी माता पिता के द्वारा जन्म नहीं लेना होता है, इसलिए आपने श्री राम के, श्री कृष्ण जी के, सबके माता पिता के कहानी वर्णन सुना है ना, लेकिन क्या शिव जी के कोई माता पिता के बारे में सुना है? शिव पुराण भी बना हुआ है, परंतु शिव के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा का नाम है शिव, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है, जानते हैं, कल्याणकारी। जब संस्कृत में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? शिवम अस्तु, आपका भला हो, कल्याण हो, है ना, तो कल्याणकारी है, इसलिए शिव है। बिंदु उसका स्वरूप है और बीज उसका स्वरूप कहेंगे। जैसे बीज बहुत सूक्ष्म छोटा सा होता है, लेकिन उसी बीज में ताकत है कि जब वो जमीन में पड़ता है तो कितना विशाल वृक्ष, जिसमें टहनियां भी, पत्ते भी, फूल भी, लताएं भी, सब कुछ निकलता है, लेकिन वो सबका सार होता है, वो क्या होता है? बीज। तो परमात्मा भी इस सृष्टि के बीज है, शुभकारी है, मंगलकारी है। ये जो उनका नाम रूप ज्ञान स्वभाव और कर्तव्य, इसे ठीक से समझना तभी हम योगी बन सकते हैं। अभी आप कहेंगे योग से क्या इसका कनेक्शन है? योग लगाना है जिससे, शक्ति लेनी है जिससे, अगर उसका पूरा परिचय ही हमें नहीं होगा तो हम उस स्वरूप में पूरी श्रद्धा, पूरे विवेक के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, और जब जुड़ेंगे ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो प्राप्ति भी नहीं होगी। आपको कौन समझाने की जरूरत नहीं है कि कनेक्शन लूज होने पर इलेक्ट्रिसिटी पावर भी नहीं मिलता, फोन का कम्युनिकेशन भी हो नहीं पाता, तो आत्मा का भी परमात्मा से कनेक्शन कब होगा? जब यथार्थ जान लेगी यही है, यही है, और श्रद्धा और विवेक यानी दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो आपका योग लगेगा। वरना आप योग लगाते लगाते भी सोचेंगे, आजकल कईयों के घर में मैं जाती हूं तो देखती हूं कि पूरा परिचय है नहीं परंतु श्रद्धा है, श्रद्धा से ज्यादा भी एक तरीका और है। भगवान को दो तरह से लोग याद करते हैं, एक तो कुछ चाहिए तब, राइट राइट, कुछ चाहिए तब ईश्वर के द्वार पर, भगवान ये करना है, आज रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, बेटा पास हो जाना चाहिए, केस खत्म हो जाना चाहिए, आपके नाम से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरा क्यों याद करते हैं भगवान को? डर लगता है, सभी कर रहे हैं और अगर मैंने न किया, पता नहीं भगवान की कोई क्रुद्ध दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ देगा वो। इसलिए हे भगवान नाराज मत होना, ऐसे डर से याद करते। ये दोनों ही तरीके गलत है। एक तो हम बच्चे हैं और वो पिता है, पिता से मांगना कैसा? पिता को तो पहले ही पता है बच्चों को क्या चाहिए, बल्कि बच्चे को खुद नहीं पता है कि उसे क्या चाहिए, उतना उसे पता है। इसलिए ये भी गलत है। और डर, डर तो किसी भी संबंध में कभी भी सही नहीं होता है। डरना माना आपका रिश्ता प्रॉपर है ही नहीं। आपका रिश्ता जहां अच्छा होता है वहां डर नहीं होता है, बल्कि अधिकार होता है, प्रेम होता है। भय से कभी प्रीत नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा को जानेंगे तो भय कम हो जाएगा। आज तक हम डरते रहे, पता नहीं भगवान ऐसा कर दे, पता नहीं अब सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, अगर मैंने न किया तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो कईयों के घर में क्या करते, सबकी फोटो रखते हैं। छोटा सा स्थान है, सबकी फोटो लगा दी। टाइम 10 मिनट का है, ज्यादा टाइम भी नहीं है। 2 अगरबत्ती जलाई, सबके सब को सब राजी रहना, बस कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई प्राप्ति का पता नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। पर हम समझते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को याद करते हैं और यदा कदा कहते हैं प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है, जीवन में यूं ही दौड़ भागे, कुछ शांति नहीं है। याद तो करती है भगवान को, मानते तो खूब है, क्या मानते हो? 10 मिनट में 2 अगरबत्ती में भगवान खुश? ऐसे नहीं चलेगा। कोई भी चीज की प्राप्ति करनी है तो जानना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। परमात्मा को ठीक से जानिए, पूछिए, सोचिए, बार बार कई लोगों से जानकारी लीजिए। जितना जानोगे डर कम हो जाएगा। पेड़ पे चढ़ने से कुछ लोग डरते हैं, एक बार पेड़ पे चढ़ना सीख जाओगे डर खत्म। कुछ लोग नदी में नहाने से डरते हैं, एक बार नहा लिया, तैरना आ गया, फिर डर खत्म। परमात्मा को भी अच्छी तरह से जान के जाइएगा ज्ञान सरोवर से, मैं गारंटी करती हूं कभी नहीं डरोगे आप। डर किस लिए? वो हमारा अपना है। वो तो ऐसे कह रहा है, आओ बच्चे मेरे से शक्तियां लो। क्यों छोटी छोटी बातों में तुम परेशान रहते हो? क्यों छोटे छोटे दुख दर्द में तुम दुखी हो जाते हो? मैंने तुम्हें संसार में इसलिए भेजा क्या? मैंने तो संसार में तुम्हें खुश रहने के लिए भेजा है। तुम मेरे से पूछो ना, मेरे से बात करो ना। कंपनी से हम कोई सामान खरीदते हैं, उसका एक वारंटी गारंटी कार्ड होता है, उसको संभाल के रखते हैं, है ना। और जब कभी वो इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो हम ढूंढते हैं ना, और उसी को कांटेक्ट करते हैं ना कि भाई इसको अब ठीक कैसे करना। पहले पहले तो चल गया, लेकिन होता क्या है अक्सर कि शुरू शुरू में अच्छा चल जाता है, फिर हम वो वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, वो बॉक्स सब रद्दी में डाल देते कई बार। और जब चीज खराब होती है तब हमें मिलता नहीं है टाइम पर, फिर हम परेशान होते हैं, है ना। तो यहां भी हमने ऐसे ही किया। दुनिया में आए, बचपन अच्छा बीता, जवानी अच्छी बीती, सोचा चल जाएगी जिंदगी बराबर, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी, फिर हम चिल्लाने लगे भगवान करे तो क्या करे। भगवान ने कहा गारंटी कार्ड कहाँ है? वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो एक कनेक्शन जोड़े रखने की बात है। बस कुछ नहीं करो, 24 घंटा आपके पास है। सारे काम कीजिएगा, सारे रिश्ते निभाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, एंटरटेनमेंट कीजिएगा, कोई बात का मना नहीं है। 1 घंटा तो उसके साथ भी बात कीजिएगा, कनेक्शन बना रहेगा, समय पर आपको बहुत मदद मिलेगी। इन सबको एक ही शब्द में कहें तो परमात्मा शिव है, शिव अर्थात कल्याणकारी। हम लोग यहाँ प्यार से कहते हैं शिव बाबा। बाबा मीन्स कोई दाढ़ी वाला बाबा नहीं है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहते, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है? परमात्मा का ज्ञान देने के निमित्त बने, संस्था की स्थापना के निमित्त बने, वो फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो भगवान नहीं है, वो हमारे गुरु भी नहीं है। इसलिए हम ब्रह्मा की फोटो लगा के नहीं घूमते हैं। आपने किसी के गले में देखा ब्रह्मा बाबा की फोटो? नहीं, ये केवल निमित्त है। इन्होंने भी पुरुषार्थ किया, परमात्मा से अनुभूतियां की, साक्षात्कार हुआ। आज आपको सुनाया जाएगा कैसे बाबा को साक्षात्कार हुआ था और फिर उन्होंने ये कार्य शुरू किया परमात्मा की आज्ञा से। तो उनको हम नहीं भगवान कहते हैं, भगवान एक ज्योति स्वरूप शिव को, और शिव बाबा, बाबा मीन्स पिता, तो बड़े प्यार से याद करते हैं। परमात्मा की विशेषताएं सुन लेते हैं थोड़ी सी। प्राउड तो होता है ना, अपना पिता कोई बहुत बड़ा हो तो बच्चा हर जगह बताएगा, पता है मेरे पापा क्या है, पता है मेरे पापा क्या करते हैं। हमें भी तो प्राउड होना चाहिए, हम उसके बच्चे हैं जो सारी दुनिया का रचयिता है। कभी कभी कोई बोलता है ना, आपके पिताजी का है क्या? यस। क्या बोलना? ये सारी दुनिया में जो कुछ भी है वो किसका है, किसका है? हाँ, नशे से खुशी से बोलिए ना, किसका है? हमारे पिताजी का है, हम उसके बच्चे हैं। सारी दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो ना, हमारे पिताजी का है। इसलिए हम इस दुनिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर उससे कनेक्शन है तो। तो परमात्मा की विशेषताओं के लिए तो वैसे कहते हैं ना, सागर को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, और जंगलों की कलम बना दो, तो भी सरस्वती भी न लिख पाए, इतनी अपरम अपार महिमा है। फिर भी हमें पता होना चाहिए वो परम शक्ति है, वो पतित पावन है, वो त्रिलोक के नाथ है, वो सर्व गुणों के सागर है। जितने भी गुण हमें चाहिए ना, प्रेम, शांति, आनंद, इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। वन एंड ओनली, एक ही डेस्टिनेशन रखो, आपको सब कुछ मिलेगा, सागर है वो। कल्प वृक्ष के बीज रूप है, मुक्ति दाता है, त्रिकालदर्शी है। कभी कोई बात लगती है ना, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, इधर उधर मत जाइए, हाथों की रेखाएं दिखाने ज्योतिषी के पास मत जाइए। कौन आया है बीच में, शनि आया है या क्या, क्या काम क्यों रुक रहे हैं? परमात्मा त्रिकालदर्शी है, उसके साथ लिंक लगाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्या गलती हुई थी, क्या अभी करना चाहिए और क्या रिजल्ट आएगी। तीनों कालों को जानने वाला ईश्वर है। इसलिए कहते हैं ना, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। इसलिए हाथों से कुछ नहीं होता। ईश्वर कहते हैं, कर्म बताऊंगा मैं, वो आप करते जाओ, आपका कल्याण होना ही है। वो सर्वशक्तिमान है, जो भी शक्ति चाहिए आपको, किसी मनुष्य से, किसी और तरीके से नहीं, केवल उसके पास बैठ जाइए। सर्वशक्तियां उसके पास है, किसी और को परिवर्तन करने की, अपने माइंड को परिवर्तन करने की, अपने शरीर को शक्तिशाली करने की, दर्द को मिटाने की, डिसीजन लेने की, आपको आगे बताएंगे। ये भी आपका एक सेशन है कि परमात्मा से कौन कौन सी शक्तियां मिलती है। तो सर्वशक्तिमान है, दिव्य बुद्धि के दाता है, मनुष्य को देव बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है। कितना अच्छा हो जाएगा अगर भाग्य विधाता ही मेरा पिता होगा और उससे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स होंगे, तो मेरी किस्मत में क्या कमी रहेगी? तो भाग्य विधाता है, स्वर्ग का रचयिता है, त्रिमूर्ति संसार के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और विनाशकर्ता शंकर, इन तीनों के भी रचयिता है वो निराकार शिव है, और सर्व प्रकार का ज्ञान देने वाले वो है। तो ये है परमात्मा की संपूर्ण महिमा। और इसको याद करते करते हमारा कितना समय हम बैठे रहेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान में मन लगता नहीं है, करे तो क्या करे, शिव 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 कितनी देर तक करे, राम 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 कितनी देर तक करे, मन तो इधर उधर चला जाता है। तो आपको शिव 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 नहीं करना है, योग माना नाम नहीं जपना है, लेकिन इन गुणों को अपने अंदर चिंतन में लाना है, और साथ साथ अपने आप को भी इन गुणों से मैं कैसे विभूषित करूं, ये परमात्मा से बातचीत करनी है और शक्ति लेनी है। इट इज कॉल्ड राजयोग. इसलिए कहते हैं राजयोग में केवल मन को शांत करना नहीं है, परमात्मा की आवाज को सुनना भी है, है ना. इंग्लिश में आप देखो तीनों का स्पेलिंग एक जैसा है. लिसन लिखो तो भी वही अल्फाबेट है, और साइलेंट लिखो तो भी अल्फाबेट सेम है. तो कुछ साइलेंट करना है और कुछ लिसनिंग भी करनी है. वो कुछ कहता है, वो कुछ प्रेरणा देता है, तो योग में हमें वो सुनना है. अंतर की आवाज, ईश्वर की आवाज सुनने को योग कहते हैं. वो सुनाई देगी आपको. अब आत्मा और परमात्मा को भी कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है. तो आत्मा ही परमात्मा है या आत्मा और परमात्मा में कुछ चीजें समान है जो आपको बताते हैं. पहले तो आत्मा भी दिखाई नहीं देती, कोई आकार नहीं, परमात्मा भी निराकार है. आत्मा चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है. आत्मा बिंदु है, वो भी बिंदु है. आत्मा अविनाशी है, विनाश नहीं होती, परमात्मा भी अविनाशी है. आत्मा एक स्वप्रकाशित ज्योत है, परमात्मा भी स्वप्रकाशित ज्योत है. ये तो हुई समानता. लेकिन कुछ चीजों में अंतर भी है, इसलिए वो भी जान लेना जरूरी है. आत्मा सो परमात्मा हम कभी नहीं कह सकते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है. अंतर क्या है? आत्माएं अनेक है, है ना. संसार में इस समय तो कितने हैं? 800 करोड़ आत्माएं तो अनेक है, और परमात्मा एक है. आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, शरीरधारी है ना, हम जन्म लेते हैं, परमात्मा अवतरित होते हैं. आप में से कईयों को शायद पता होगा या आपने ध्यान दिया होगा, भारत में मंदिर बहुत है, शिवालय बहुत है, अभी भी नए नए कई मंदिर बनते ही जाते हैं, है ना. क्या आपने कभी नोट किया है कि जो देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं और जो शिव का मंदिर बनता है, ये दोनों के मंदिर बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है जी. जी देखिए, जब कोई अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनते तो पूरा मंदिर बन जाता है, फिर द्वार से मूर्ति का प्रवेश करके प्रतिष्ठा होती है. लेकिन जब शिव मंदिर बनता है तो अधूरा बनता है. पहले केवल दीवारें साइड साइड का बनता है, ऊपर का जो होता है ना वो नहीं बनता है. और जब शिवालय शिवलिंग को स्थापित किया जाता है तो ऊपर से उतारा जाता है, द्वार से कभी प्रवेश नहीं कराया जाता. इट इज द यादगार. ये फैक्ट है, क्योंकि बाकी सभी का गर्भ द्वार से जन्म होता है, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अवतरित माना जाता है. तो परमात्मा अवतार लेते नहीं, अवतरित होते हैं. ठीक है, तो ये भी फर्क है. इस तरह से हम सब देह को धारण करते हैं, परमात्मा देह से न्यारे हैं, उनका अपना देह कभी वो धारण करते ही नहीं है. गीता में भी परमात्मा ने कहा है, मैं जब अपना कार्य करता हूं तो प्रकृति को अधीन करके पर काया द्वारा अपना कार्य करता हूं. तो पर काया प्रवेश करते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं की काया धारण नहीं करते. परमात्मा आत्मा भोगता है, सुख दुख सब भोगते हम, परमात्मा अभोगता है. उनके लिए न सुख है, न दुख है, न कोई भी प्रकार की अनुभूति नहीं है. आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा इस चक्र से न्यारे हैं. इसलिए उसको क्या कहते हैं, भगवान मेरा भी फेरा मिटा दो, बोलते हैं ना. अगर वो खुद ही चक्र में आने वाला होता तो मुझे कहां से छुड़वाता. परंतु ये भी आपको बता दे, कोई भी आत्मा जन्म मरण से छूटती नहीं है. जो आए हैं उनको आना तो होता ही है, इसलिए छूटने का नहीं सोचना है. जितने भी जन्म मिले अच्छी तरह से उसको जी के दिखाएंगे, ये सोचना है. कभी भी इस शरीर को भी खत्म करने का नहीं सोचना है, और जन्म मरण से छूटने का भी नहीं सोचना है. आजकल तो ये भी बहुत हो गया है ना, कुछ ज्यादा टेंशन हो गया तो लोग क्या करते हैं, हमें जीना ही नहीं है. लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? आत्मा तो अविनाशी है, दूसरे शरीर में जाके भी वही तकलीफें जो बाकी होगी वो भोगनी पड़ेगी. तो क्यों नहीं इसी शरीर में जो आना है उसका मुकाबला किया जाए, है ना। इसलिए हर धर्म में कहा गया है आत्महत्या महापाप है, जीव घात महापाप है। तो परमात्मा कहते हैं जन्म मरण से मैं न्यारा हूं, तुम नहीं हो सकते। अब परमात्मा को कैसे सर्व धर्म से उच्च और सर्व का पूजनीय कहा गया। सबसे पहले शंकर जी को देखो, शंकर जी को भी हमेशा अमरनाथ में साधना की और आज भी हम वहां पर पूजते हैं, याद करते हैं। तो ध्यान रत दिखाया गया। तो इसलिए एक बात जो आपको सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही शायद सुनने को मिलेगी कि शंकर और शिव एक नहीं है। शंकर जी तपस्वी आकारी देवता है जिनका संसार के विनाश में तीसरे नेत्र के द्वारा बहुत बड़ा योगदान होता है, जो हम सुनते भी आए हैं कि भगवान का जब तीसरा नेत्र खुलता है शंकर जी का तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाती है। तो वो प्रलयकारी देवता है, परमात्मा तो कल्याणकारी है, वो प्रलयकारी नहीं हो सकते। इसलिए शंकर जी को भी ध्यानस्थ दिखाया जाता है। तो वो भला किसका ध्यान लगाते हैं? शंकर जी भी शिव जी का ध्यान लगाते हैं। शिव निराकार है, इसलिए दिन को मनाते हैं तो क्या कहते हैं, शिवरात्रि, है ना, शंकर रात्रि नहीं, शिवालय, शंकरालय नहीं। और शिवालय में पूजा किसकी है? लिंग तो एक प्रतीक के लिए बनाया, कहीं बड़ा होता कहीं छोटा भी होता, कहीं रेड कलर का भी होता कहीं थोड़ा ब्लैक कहीं व्हाइट भी होता है ना, लेकिन यादगार किसकी है? ज्योति बिंदु। तो वो निराकार शिव के यादगार है। तो शंकर जी भी शिव से शक्ति प्राप्त करते। स्वयं श्री राम जी ने भी रामायण के अंदर हमने सुना कि जब लंका में जाना था तो उसके पूर्व में क्या किया था, रामेश्वरम जो आज भी भारत का बहुत बड़ा विख्यात मंदिर है सागर के किनारे, जहां से राम सेतु का भी गायन है, 900 बड़े बड़े पिल्लर एक समान एक लाइन में है और एक ही मंदिर में 22 कुंड है और 22 के 22 कुंड के जो पानी है उसका स्वाद अलग अलग है। तो ऐसे रामेश्वरम की स्थापना स्वयं श्री राम जी ने अपने हाथों से की थी, यानी राम के भी ईश्वर। वृंदावन में मंदिर है जहां गोपेश्वर कहलाते हैं शिव, तो श्री कृष्ण जी के द्वारा वहां शिव जी की पूजा की गई। यानी इन अवतारों के समय भी ये कहा गया कि सर्वोच्च सत्ता है वो शिव है। सोमनाथ और अमरनाथ और इस तरह के प्राचीन ज्योतिर्लिंग भारत में बहुत है, नेपाल में पशुपतिनाथ, इन सब को तो हम जानते ही है कि सनातन धर्म में तो शिव को प्रमुख माना गया। चाहे मंदिर किसी भी देवता का होगा तो भी साथ में शिव मंदिर वहां पे भी अवश्य होता है। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां शिव मंदिर ना हो। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप कहीं भी चले जाएं, पूरे भारत में हर जगह सनातन में शिव का पूजन होता है। इस्लाम जिसके अंदर काबा की हज की जाती है और काबा को पूजते हैं, परंतु उस काबा के अंदर जो पत्थर है जिसको नूरे इलाही कहते हैं, जहां जाकर उसे चुंबन करते हैं और एक शैतान के पत्थर लगाते हैं, ये पूरी उसकी रिचुअल्स होती है। तो वो काबा के अंदर जो निशानी है वो कौन सी है? तो बिल्कुल एक ब्लैक पत्थर के अंदर सफेद बिंदु। हो सकता आप में से किसी ने विजिट भी किया हो, पर वो नूरे इलाही अर्थात सुख देने वाली ज्योति, ये अर्थ होता है सुख देने वाली ज्योति, वो ईश्वर है। हजरत मोहम्मद साहेब को भी जब पहली बार साक्षात्कार हुआ, प्रेरणा आई, तो उनको एक गुफा में, हीरा नाम की गुफा में ज्योति का ही साक्षात्कार हुआ था। दर्शन जो किया था ज्योति का ही किया था। और आज भी मुस्लिम कोई भी मूर्ति को तो पूजते ही नहीं है, वो निराकार ही मानते हैं। हम जब उनकी नमाज की आवाज सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, है ना, अकबर, जो कभी कब्र में नहीं जाते वही ईश्वर है। जन्म लेगा वो तो कब्र में जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस्लाम भी निराकार को ही मानता है। गौतम बुद्ध का आपको पहले ही बताया, उन्होंने भी गुणों को ईश्वर कहा है। महावीर स्वामी ने अरिहंत के रूप में ईश्वर का पहला नाम लिया है। ईसा ने गॉड इज लाइट कहा है। गुरु नानक देव ने निरंकार कहा है। ये सभी मिलकर एक ही की तरफ इंगित करते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने हमें इसलिए ये स्पष्ट समझाया कि वो निराकार परमात्मा पिता और परमात्मा ने निराकार ब्रह्मा के तन के द्वारा ये वाणी सुनाई, जिसके आधार पे आज आपको ये सारा परिचय बहने दे रही है। और विश्व के इतने देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय परमात्मा शिव का ये स्पष्ट परिचय देते हैं। यही बेस है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि हम एक निराकार शिव को ही याद करें। तो आइए हम सभी भी, जब हमने जान लिया है कि वही एक है, वही ईश्वर है, तो उनकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। 3 मिनट के लिए हम सभी सीधे होकर बैठें, दोनों पांव जमीन से जड़े हो, या आप अगर पालकी लगा के बैठे हैं अलग बात है, जमीन पे भी कोई बैठते हैं घर में तो भी अच्छी बात है। राजयोग एक ऐसी यात्रा है जिसमें पहले हमें आत्म अनुभूति करनी है, आत्म रियलाइजेशन करना है, खुद को देह से अलग ज्योति रूप में अनुभव करना है। और उस ज्योति का पिता है परमात्मा। तो एक सूक्ष्म यात्रा करनी है उस परम ज्योति की तरफ जाने की, और फिर परमात्मा तक पहुंचकर अपने कॉन्शियस को ले जाएंगे, परमात्मा तक पहुंचकर उनसे बात करनी है। बहुत सहज है परमात्मा से बात करना। जब आप आत्म स्वरूप में होंगे तो आप स्थूल बातें तो नहीं करेंगे, परंतु फिर भी आज आपको एक सैंपल के रूप में हम क्या बात करें ये बताएंगे। तो कोशिश करें कनेक्ट होने की। सभी अलर्ट होके बैठे हैं, तो चलिए कुछ देर के लिए आज जो हमने परमात्मा के एक स्वरूप को जाना है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले अपने आप को मस्तक के बीच ए टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म ज्योति के रूप में देखें। मैं आत्मा हूं। देह के सर्व कर्म इंद्रियों के द्वारा, सर्व अनुभूति करने वाली शक्ति मैं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शांत हूं। लाइट, देह से अलग हल्का अनुभव करें। ज्योति बिंदु हूं मैं। दीपक की लौ की तरह मस्तक में चमक रहे हैं। मुझ आत्मा ने जीवन पर्यंत अनेक कर्म किए, अनेक अच्छे बुरे अनुभव किए। मैं आत्मा अब पुनः शक्तिशाली बनने के लिए अपने भीतर की और यात्रा करती हूं। मैं पुनः शक्तिशाली बनने के लिए सारे देह के बोझ, देह के संबंध, सर्व जिम्मेदारियां, सभी टाइटल्स, सबको भूलकर अकेले हो जाएं। खुद को चार्ज करना है तो सारे फंक्शंस कुछ देर के लिए बंद कर दें। केवल एक संकल्प, मुझ आत्मा को रिचार्ज होने के लिए परम ज्योति की ओर चलना है। दो आंखों के बीच मस्तक में हूं, कुछ देर के लिए शरीर को भी यहीं छोड़कर परमात्मा की तरफ चलें। मेरे प्यारे पिता, विश्व नियंता, सर्वोच्च सत्ता की ओर चलें। आज प्रभु से मुलाकात करनी है। ऊपर की ओर, जैसे हवाई जहाज में हम धरती को नीचे छोड़कर आकाश और बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं, आज मन से उड़ें धरती के सर्व बोझ पीछे। मैं आत्मा परम धाम की ओर, जहां लाल सुनहरा प्रकाश अनेक ज्योति बिंदु आत्माएं और विराजमान है, परम ज्योति परमात्मा देखे मन की आंखों से। विशाल ज्योति चारों ओर फैलती हुई पवित्र किरणें, शक्तिशाली किरणें, एक प्यारी सी किरण मुझ आत्मा तक आ रही है। फील करें, उसी किरणों के सहारे और नजदीक जाए परमात्मा के। मन से मुलाकात है आज, वो परम ज्योति परम पिता, मैंने विवेक से आपको जान लिया है, पहचान लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आप मेरे रचयिता पिता है। मैं आत्मा आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं जानता हूं आपका भी हम सभी आत्माओं से बहुत प्रेम है। आप हमें दिव्य ज्ञान देकर राह प्रशस्त कर रहे हैं, उसी राह पर चलकर मुझे भी दिव्यता को जीवन में बढ़ाना है। एक प्यारा सा वायदा परमात्मा से करें, ओ प्यारे शिव बाबा, आप ही की तरह मुझे भी शांति की शक्ति से भरपूर रहना है, सभी को प्रेम देना है, सर्व का कल्याण करना है, यही मेरा बचे हुए जीवन का लक्ष्य है। आपका सानिध्य हमें शक्ति देता रहे। बाबा, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और ऐसे ही आपका प्यार और शक्ति प्राप्त करता रहूंगा।